समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ हैं वीसी प्रमोद। नमस्कार प्रमोद।
नमस्कार नवीन, इट्स वंडरफुल लिसनिंग टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग फॉर यू अ फॉरएवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein in the next half an hour we'll bring to you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, the 1st of May.
आज मैं और प्रमोद जब इस शो को कर रहे हैं तो कुछ न कुछ खास तो होगा ही, और खास होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर देना है ताकि वो तमाम बातें जो हम आज जो आपको बताएंगे वो आप तक पहुंच सके, ताकि आप दिन भर के लिए तैयार हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और फिर आप सोचिएगा कि ये गीत हमने क्यों बजाया, क्योंकि आज दो बेहतरीन व्यक्तित्वों के बारे में, दो बेहतरीन पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे जो जुड़ी हुई हैं इस गीत से।
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
तो आप सोचिएगा कि ये गीत आज हमने क्यों आपके लिए प्ले किया है, और अगर आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे। अच्छा प्रमोद, क्या आप जानते हैं कि वो आज ही का दिन था जब काम करने के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया था।
एग्जैक्टली, आई थिंक टुडे इज लेबर डे।
लेबर डे, मजदूर दिवस है, श्रमिक दिवस है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर, क्या कुछ हो रहा है देश दुनिया में।
दैट्स राइट नवीन, Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi is scheduled to address 6 election rallies across Gujarat today and tomorrow. The Prime Minister will address public gatherings at Vav in Banaskantha district and Himmatnagar in Sabarkantha districts of North Gujarat this afternoon. Tomorrow he will address rallies in Anand, Surendranagar, Junagadh and Jamnagar. Gujarat will go for the polls in a single phase on the 7th of May.
असम में इस महीने की 7 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रखे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज डुबरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में रैली करेंगी। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा, असम गण परिषद अध्यक्ष अखिल बोरा भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे।
That's right, नवीन, काफी गर्मी हो रही है इलेक्शंस के चलते, आपका वोट डालने का प्लान है इस बार?
बिल्कुल बिल्कुल भाई, अपने अपने अधिकार से हम बिल्कुल अपने आप को वंचित नहीं रखेंगे।
वंडरफुल। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई हैज रिवाइज द पोलिंग शेड्यूल ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस इन द अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द 3rd टू द 6th फेज। द वोटिंग इन द अनंतनाग रजौरी सीट विल नाउ बी हेल्ड ऑन द 25th ऑफ मे instead of the 7th of May as scheduled earlier. The ECI said the decision has been taken after representations from different political parties of the Union Territory regarding various logistic, communication and natural barriers turning out to be a hindrance during campaigning, leading to lack of fair opportunities for the contesting candidates.
प्रमोद, पूरे देश में लोकसभा का जो उत्सव है, जो चुनावी उत्सव है, वो पूरे अपने चरम पर है। लगा जगह जो प्रत्याशियों को लुभाने के लिए रैलियां की जा रही हैं, रोड शो की जा रही हैं, और अक्सर हम कहते हैं मतदान, मैं कहना चाहूंगा मतदान नहीं, मताधिकार, यह आपका अधिकार है। आप दान नहीं कर रहे हैं, आपको आने वाली सरकार चुननी है, तो अपने अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा। और हां, जिस दिन आपका डेट हो वहां पे मतदान करने की, मताधिकार की, उस दिन छुट्टी लेके मत चले जाइए।
एब्सोल्युटली, इन फैक्ट आई वांट टू टेल यू अ पर्सनल स्टोरी। माई डॉटर्स जस्ट टर्न्ड 18 एंड वो इतनी एक्साइटेड है दैट शी हैज टू गिव हर वोट, which I thought is very good. The youngsters nowadays, they're really coming out in the open and they really want to exercise their franchise.
बिल्कुल, क्योंकि ये दिन फिर पांच साल बाद आपको मिलेगा, है ना?
Exactly.
तो सोच के चलिएगा कि आपको उस दिन आपको वोट जरूर करना है. बहरहाल उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं. उत्तर प्रदेश में आज कई महत्वपूर्ण उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इस अवसर पर कई स्टार प्रचारक उनके साथ उपस्थित रहेंगे. राज्य में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक रैलियां और रोड शो भी हो रही हैं.
Right, elections की बात कर रहे हैं नवीन, so I'll give you a percentage of the turnout.
Hmm.
That's important. The Election Commission of India, ECI, has published a total voter turnout data for phase 1 and 2 of the ongoing Lok Sabha elections. The commission said yesterday that 66.14% voter turnout was recorded in the phase 1 and 66.71% in phase 2. ECI highlighted that the first phase data comprises 66.22% male voters, 66.07% female voters, and 31.32% third gender voters. While in the second phase, 66.99% male voters, 66.42% female voters, and 23.8% third gender voters used their franchise.
चलिए अब चुनावों से थोड़ा सा हटते हैं और अयोध्या का दौरा करते हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगी. राम मंदिर अभिषेक समारोह के बाद राम जन्मभूमि की ये उनकी पहली यात्रा है. राष्ट्रपति मुर्मू शाम को हनुमानगढ़ी भी जाएंगी और सरयू आरती में शामिल होंगी. राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर लखनऊ अयोध्या गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे से राम पथ को जोड़ने वाले मार्ग पर यातायात को परिवर्तित किया गया है. हालांकि इस बीच श्रद्धालु पहले की तरह ही मंदिर में जा सकते हैं. राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar attended the Indian Air Force's No. 3 Warfare and Aerospace Strategy Program, WASP, in New Delhi yesterday. In a social media post, the Indian Air Force said that the program is aimed at exposing the key elements of comprehensive national power, developing critical thinking and cultivating an understanding of a whole of government approach. The IAF further said that the course consisted of 14 officers from the IAF, 2 from the Indian Navy and 1 each from the Indian Army and academia. The participants benefited immensely from an incisive and thought-provoking discussion with the minister on his seminal book titled The India Way, Strategies for an Uncertain World, the Indian Air Force added.
म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तान स्वे से मुलाकात की. म्यांमार में भारतीय दूतावास के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और व्यापक स्तर पर चर्चा हुई. और अब बात खेलों की दुनिया की.
That's right. I was wondering कि अब तक आपने स्पोर्ट्स का कोई न्यूज नहीं दिया.
अब है ना हमारे पास.
जी जी.
तो पहले बैडमिंटन फिर क्रिकेट.
Absolutely. India will host the 2025 edition of the Badminton World Federation BWF World Junior Championships at the National Centre of Excellence in Guwahati. According to the BWF president, Paul Orik Hoya, India's production line of elite badminton talent is booming. It is of great significance for the BWF to bring the world juniors to India for just the second time, he added. The dates for the event will be announced later. The BWF World Junior Badminton Championships 2025 will mark the return of the tournament to India for the first time since 2008 when Pune hosted the event.
And now about cricket. IPL cricket, Lucknow Super Giants ne Mumbai Indians ko 4 wickets se hara diya. Lucknow ki Ekana Stadium mein ye match khela gaya tha. आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा. और अब खबरें आपके शहर से. पहले चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ प्रमोद, और फिर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के साथ मैं.
That's right, Naveen. I'll start with Chennai. The US-based industrial automation company Rockwell Automation on Tuesday said it would open a 98,000 square feet manufacturing facility in Chennai in the first half of 2025 and would employ around 230 workers by the end of that year. The facility will be established at Sholinganallur Elkot Special Economic Zone, where its cubic manufacturing facility is located. The cubic specializes in modular enclosure systems for construction of power and electrical panels. Rockwell hopes this facility will make its supply chain more resilient in the Asia-Pacific region and plans the facility with potential for expansion. The Rockwell is investing in India by expanding its manufacturing presence and building a new factory in Chennai, the company said in a statement. Greater Chennai Corporation will be setting up 200 gyms for women. The civic body's chief engineer S. Rajendran said that they were in the process of finalizing locations accessible to lower income groups. The gyms will be located in areas accessible to both urban middle class and poor. It will have a treadmill, cycling, EFX machine and hydraulic weightlifting machines. It will also have dumbbells. The Indian Institute of Science in Bengaluru has helped Bengaluru Water Supply, BWSSB, to produce zero bacteria processed water. The institute has evolved a low-cost indigenous technology to treat used water and make it zero bacteria after processing. Bangalore City discharges 1,800 MLD of wastewater every day, out of which 1,200 MLD wastewater is treated by BWSSB on a daily basis using the technology developed by the Indian Institute of Science. This treated water is used for non-human utility like for gardens and vehicle wash. The Pollution Control Board has approved the zero bacteria water use for non-human purposes. BWSSB has now the capacity to treat 1 crore litres of wastewater every day by adopting the indigenous technology in its Agara, KC Valley and Belandur sewage treatment plants. The zero bacteria treated water is supplied at nominal cost to Wipro IT Company, HAL and other IT companies as air conditioning cooling agents for cleaning factory floors and other industrial purposes. I think this is a very important news. Jo water hai usko waste, jo water hai usko save karna. Due to the acute shortage of drinking water in the Bengaluru city, BWSSB has adopted this mechanism to reduce Kaveri water supply for secondary usage of water. And now moving on to Hyderabad in Telangana, several places witnessed scorching temperatures with 6 locations recording the highest maximum temperature of above 46 degrees Celsius. According to Telangana State Development Planning Society, TDSSP, the highest maximum temperature recorded in the state was 46.2 degrees Celsius in Jaina in Jagtial district of Madhugalapalli in Nalgonda district. Naveen, ye thoda sa shocking nahi hua? May 1st, 46.2 degrees. Alipur of Jagtial district recorded a 46.1 degrees Celsius temperature mark, and Kolwa in the same district, Kotaragattu in Karimnagar and Veenavanka in Karimnagar district recorded 46 degrees Celsius. Meanwhile, within the Greater Hyderabad Municipal Corporation limits, the highest maximum temperature recorded was 43.5 degrees Celsius in Kapara, trailed by 43.3 degrees Celsius in Hafizpet. So those were the metro news from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What do you have for us from Delhi, Mumbai?
सबसे पहली बात दिल्ली की करते हैं प्रभु. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने एग्जीक्यूटिव MBA कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है. 2 वर्ष की अवधि वाला ये कार्यक्रम जुलाई से शुरू होगा. इस पाठ्यक्रम के लिए 31 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं. पाठ्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए विभाग के फोन नंबर 01126597034 पर संपर्क किया जा सकता है. अगली खबर, दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है. डॉ बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय AUD ने कल शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के स्नातक और स्नातकोत्तर दाखिलों के लिए एडमिशन ब्रोशर जारी किया. नए शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रमों की जानकारी देते हुए कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठर ने बताया कि इस बार स्नातकोत्तर स्तर पर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है. बात मुंबई की, महाराष्ट्र के 65वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल रमेश बैस आज मुंबई के दादर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में झंडा फहराएंगे. इसके बाद आज शाम राज्यपाल मुंबई में शिवाजी पार्क के पास क्रीड़ा भवन में बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेंगे. बृहन मुंबई नगर निगम ने मराठी नेम प्लेट नहीं लगाने वाली 625 दुकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की और उनसे कुल 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बृहन मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर मराठी भाषा देवनागरी लिपि में मोटे अक्षरों में बोर्ड लगाना अनिवार्य है। बात गणेश मूर्ति की। बृहन मुंबई नगर निगम ने कल घोषणा की कि पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक निकाय श्री गणेश की मूर्तियां बनाने वाले मूर्ति निर्माताओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर साधु मिट्टी और जगह उपलब्ध कराएगा। और अब रुख करते हैं कोलकाता का। एक आतंकवादी संगठन ने एक राजभवन, भारतीय संग्रहालय और कोलकाता के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विस्फोट करने का दावा किया है। कोलकाता पुलिस ने शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। एक ईमेल भेजकर लोगों को आतंकित करने की धमकी दी गई है और पुलिस ईमेल के आईपी एड्रेस की जांच कर रही है। मेट्रो स्टेशनों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य सचिवालय नबन्ना में नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है। तो ये थी दिल्ली मुंबई और कोलकाता की खबरें। और अब बात आपके शहर के मौसम की। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। अब से कुछ देर पहले हमें प्रमोद बता रहे थे कि कुछ शहरों का तापमान बहुत तेजी से बढ़ गया है। पहली मई है, 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है। शायद इसे ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं।
एब्सोल्युटली, बट दिस कैरी।
और इसमें गलती किसकी है? हम लोगों की ही गलती है ना। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वन काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को बिल्कुल खाली कर दिया गया है पेड़ों से, उसका सीधा असर दिख रहा है ना। और यही असर दिल्ली में भी दिखेगा। हालांकि आज टेम्परेचर 26 से 35 के बीच रहेगा, लेकिन उम्मीद है या यूं करें आशा कर सकते हैं या यूं कहें यह थोड़ा सा दुखद होगा कि टेम्परेचर और आने वाले दिनों में बढ़ेगा। मुंबई न्यूनतम तापमान 28 डिग्री, अधिकतम तापमान 31 डिग्री। कोलकाता न्यूनतम तापमान 31 और अधिकतम 40 डिग्री के आसपास रहेगा। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद क्या हाल है?
जी, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मेनली क्लियर स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 38 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky, but the temperature will hover between a minimum of 27 degrees Celsius and a maximum of 46 degrees Celsius.
और अब बातें आज के इतिहास की। कहते हैं कि इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए नहीं कि हम उन तारीखों को याद करें कि इस दिन ये हुआ था, ताकि हिस्ट्री के पेपर में हमें बहुत अच्छे नंबर मिले। इतिहास जानना इसलिए जरूरी होता है कि ताकि हम वर्तमान में बहुत कुछ जो करना चाहते हैं उसे अपने भूतकाल से सीख सकें और अपने भविष्य को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें, है ना। आज 1 मई है, यानी श्रमिक दिवस, मई दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे। अब इसकी भी एक वजह है, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं प्रमोद। 1886 में वो आज ही का दिन था जब अमेरिका के शिकागो शहर में हजारों मजदूरों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किया था और उनकी मांग थी कि मजदूरी का समय 8 घंटे निर्धारित किया जाए, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी हो। और अगर ऐसा नहीं होता,
जायज है,
बहुत जायज है ना, और अगर ऐसा नहीं होता तो पहले की तरह आज हम 15-15 घंटे काम कर रहे होते। एंड यू थिंक कि क्या ज्यादा काम करना जरूरी होता है या क्वालिटी काम करना जरूरी होता है?
क्वालिटी काम करना।
तो क्वालिटी काम अगर हम 8 घंटे में कर सकते हैं तो उसके लिए 15 घंटे जाया करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये इतिहास की एक पहली घटना थी। सिलसिलेवार नजर डालते हैं और घटनाओं पर।
जी, आई विल टेक यू टू 1897। स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन एंड इन 1909 मैडम बिकाईजी कामा सीक्रेटली लेफ्ट फॉर लंदन एंड वेंट टू फ्रांस वेयर शी रोट एंड स्पोक अबाउट द क्रूएल्टी ऑफ ब्रिटिशर्स।
1960 की बात करते हैं, थोड़ा सा बहुत आगे निकल आते हैं
जी।
आज ही के दिन गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था। 1960 में वो आज ही का दिन था जब बॉम्बे स्टेट से अलग होकर दो नए राज्य बने थे, गुजरात और महाराष्ट्र। इसी दिन को महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र दिवस और गुजरात में गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। दरअसल ये दोनों ही राज्य बहुत संघर्ष के बाद बने थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ क्या था, प्रमुख भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ था। कन्नड़ भाषी लोगों के लिए कर्नाटक राज्य, तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश और मलयालम भाषियों के लिए केरल बनाया गया था। अब बॉम्बे स्टेट में भी अलग अलग राज्य की बांग उठने लगी और इस प्रांत में मराठी और गुजराती दोनों भाषाएं बोली जाती थी। फिर आंदोलन शुरू हुआ और मांगों को लेकर कई आंदोलन हुए, महागुजरात आंदोलन हुआ और अंत में आज ही के दिन दो नए राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात।
एक्सलेंट। And today in 1964, Ravi Shankar University was established at Raipur in Madhya Pradesh. And in 1966, Marathi becomes the official language of Maharashtra.
1972, आज ही का दिन जब देश की कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 2011 में वो आज ही का दिन था जब बराक ओबामा ने घोषणा की थी कि 11 सितंबर के धमाकों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन मारा गया है।
That's right. And 1981, Sindhudurg district was formed in Maharashtra state. And in 1995, SAARC endorses the South Asia Free Trade Area SAFTA and establishes a South Asian Development Fund SADF for the economic aid and technical development of the subcontinent.
और अब बात उन व्यक्तियों की जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से। तो सबसे पहले बात बलराज साहनी की। बलराज साहनी हिंदी सिने जगत के वो अभिनेता थे जिनकी गिनती बेहद प्रतिभाशाली और प्रभावशाली अभिनेताओं में होती थी।
आई थिंक यू आर राइट नवीन, एंड आई थिंक व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिज एक्टिंग वाज जो उनका एक नेचुरल लुक था। ही डिडंट लुक एज इफ ही वाज एक्टिंग, ही लुक्ड एज इफ ही वाज जस्ट डूइंग अ नॉर्मल नेचुरल सीन।
जब भी किसी आम आदमी की पीड़ा और उसकी समस्याओं की बात होती तो सबसे पहले बलराज साहनी याद आते थे। दो बीघा जमीन, गर्मकोट, ये वो फिल्में हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते।
एब्सोल्युटली। बलराज साहनी, ही वाज, डू यू नो हिज रियल नेम?
नहीं।
हाँ, युधिष्ठिर साहनी।
हाँ,
ही वाज बोर्न ऑन द 1st of May 1913। ही वाज एन इंडियन फिल्म एंड स्टेज एक्टर हु इज बेस्ट नोन फॉर धरती के लाल 1946, दो बीघा जमीन एज नवीन सेड 1952, छोटी बहन 1959, काबुलीवाला 1961, वक्त 1965, गरम हवा 1973। ही वाज द ब्रदर ऑफ भीषम साहनी, नोटेड हिंदी राइटर, प्ले राइट एंड एक्टर।
उन पर एक लिखी किताब द नॉन कन्फर्मिस्ट मेमोरीज ऑफ माय फादर बलराज साहनी, ये किताब उनके बेटे ने लिखी है
जी।
और इसमें परीक्षित साहनी जो उनके बेटे थे, उन्होंने वो बहुत सी बातें लिखी हैं जो शायद हम लोग आपस में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर उस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ उनके बारे में जान पाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सा डायलॉग निकाला है, पहले उसको सुनते हैं, बलराज साहनी को याद करते हैं
जी।
अच्छा, देखिए पंडित जी, देख लीजिए
लाला जी, आपका शुरू का जमाना बहुत तकलीफ में गुजरा।
ये आपने कौन सी नई बात बताई है पंडित जी? शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि केदारा सेठ मुरारी लाल की दुकान पर आटे की बोरियां ढोया करता था। क्यों भाई?
क्यों, बिल्कुल ठीक है।
ये मेरे हाथ पर नहीं लिखा हुआ है, ये मेरी पीठ पर लिखा हुआ है। बताइए क्या ख्याल है
लाला जी? आपके साथ और भी तो कुछ होंगे, वो सेठ केदारनाथ क्यों नहीं बने?
काम चोर से सब, इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता पंडित जी? किस्मत हथेली में नहीं, इंसान के बाजुओं में होती है। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी बना सकता है।
व्हाट अ ब्यूटीफुल डायलॉग है नवीन।
व्हाट,
एब्सोल्युटली। Sahni was always interested in acting and started his acting career with the plays of the Indian People's Theatres Association, IPTA. Incidentally, his wife Damayanti became well known as an IPTA actress much before Sahni made a name for himself in films. He started his film career in Bombay with the film Insaaf, followed by Dharti Ke Laal, directed by K.A. Abbas in 1946. And Naveen, an interesting thing about Manna Day is that Mohammad Rafi ne kaha tha that he doesn't listen to anybody except Manna Day.
बात उन पे भी करेंगे, लेकिन बलराज साहनी के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बहुत से गीत उन पर फिल्माए गए हैं, बहुत से सुपरहिट गीत है बलराज साहनी पे, लेकिन एक ये जो खूबसूरत गीत है ना, वो हम जरूर सुनना चाहेंगे और बलराज साहनी को याद करेंगे।
तू प्यार का सागर है,
प्रमुख हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी महान गायकों की बात होती है तो उसमें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर के साथ एक और हैं चौकड़ी, उसे कहते हैं मन्ना डे। उनका नाम बहुत जरूर ले लिया जाता है। आज उनका जयंती है 1 मई, और 1919 में उनका जन्म हुआ था और अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने गाए थे।
That's right. नवीन, I have a quiz for you. मन्ना डे का असली नाम क्या था?
नहीं मालूम।
ठीक है। His name is प्रबोध चंद्र डे।
Yeah.
And as you rightly said, he was known by his stage name Manna Day. He had a classical music background, being part of the Bhindi Bazaar Gharana and receiving training under Ustad Aman Ali Khan. Manna Day is widely recognized as one of the most versatile and celebrated vocalists in the Hindi film industry, and often acknowledged for his significant contributions to integrating Indian classical music into Hindi commercial cinema.
प्रमोद कहते हैं कि जब कोई गाना मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश से नहीं गाया जाता तो मन्ना डे को बुलाया जाता था।
एंड द बिगेस्ट ट्रिब्यूट ही गॉट वाज फ्रॉम मोहम्मद रफी हिमसेल्फ, हु सेड दैट फॉर हिज ट्रेनिंग ही वुड लिसन टू मन्ना डे सिंगिंग सॉन्ग्स।
रफी मन्ना डे के बहुत बड़े फैन थे।
जी,
मन्ना डे ने कृष्ण चंद्र डे और उस्ताद दाबिर खान से संगीत की तालीम ली थी।
जी, दैट्स राइट। थ्रू आउट हिज करियर स्पैनिंग ओवर 5 decades, Day recorded a total of 3,047 songs. And एक और आपके लिए एक छोटा सा एक ट्रिविया है नवीन, that he loved singing for one actor. Can you name his name?
प्रमोद, आज सारे सवाल वही पूछोगे जो मुझे नहीं
आते। Well, apparently he loved singing for Rajesh Khanna.
हाँ, और उनके बहुत ही खूबसूरत गीत
थे। जी, because according to मन्ना डे, राजेश खन्ना एक ही एक्टर थे जो उनके गानों को जस्टिस देते थे, the way he would emote his songs. And I want to play one song from the movie Safar.
Zindagi kaisi hai paheli hai, kabhi to hasaye kabhi ye rulaye. Kabhi dekho man nahi jaage.
मन्ना डे की खूबसूरत आवाज में आनंद फिल्म के इस गीत के बाद एक और गीत है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते और याद करेंगे मन्ना डे को उनकी खूबसूरत आवाज के साथ इस गीत से।
ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आज ही से तुम पास चलता नहीं।
Naveen, today is the death anniversary of a famous Malayalam actress. Her stage name was Shobha. She was actually, her real name was Mahalakshmi Menon. Indian actress, best known for her work in Malayalam and Tamil films. At the age of 17, she won the National Film Award for Best Actress for her role in the 1979 Tamil film Paasi. She of course got involved with one of the directors and she committed suicide by hanging at the age of 17. But we have a song from her National Film Award winning film, Paasi.
Iniya pun nilave, pun nilavin kanave, ninavile purusugam dararadattada, todarude dinandinam dararadattada. Iniya pun nilave, pun nilavin kanave.
आज भारत के प्रख्यात सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी की भी पुण्यतिथि है। संगीत के सीनियर घराने से संबंधित थे। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
That's right. Today is also the death anniversary of famous Indian social activist who embraced Gandhi and philosophy. She was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award, in 2006, and her name was Nirmala Deshpande. Deshpande was a nominated member of the Indian Rajya Sabha 2 times during August 1997 and June 2004.
चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आजादी के मतवालों के जोश और जुनून का अंदाजा युवा क्रांतिकारियों के जज्बे से लगाया जा सकता है, और ऐसा जज्बा जिसने जान की परवाह किए बगैर वो आजादी की चिताओं में कूद गए थे। आज पुण्यतिथि है प्रफुल्ल चाकी की, जिन्होंने पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार ली थी। उस समय प्रफुल्ल चाकी की उम्र महज 20 साल की थी। बहुत कुछ जानना चाहते हैं प्रफुल्ल चाकी के बारे में, आज गूगल कीजिएगा, डिटेल हिस्ट्री होगी और जानिएगा कि क्या कुछ उन्होंने ऐसा किया था कि उन्हें हम याद कर रखे गए। बहरहाल घड़ी की सुर्खियां बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही। चलते चलते मैं नवीन और प्रमोद आपको एक खूबसूरत विचार के साथ छोड़े जा रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस तरह से आप बातें करते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं, उसी तरह से आपका व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए मधुर बोलिएगा और मधुर रहिएगा।
दैट्स राइट, वंडरफुल नवीन। स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।